بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کے سورہ زحا کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قاری ہیں ہاشم روغنی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیاوان ہے۔ سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے، اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگری آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، اور آپ کو مارگ سے دور پایا تو گنتویہ تک نہیں پہنچایا؟ और आपको निर्धन पाया तो समृद्ध नहीं कर दिया? अतः अनाथ पर क्रोध न कीजिए और मांगने वाले को न झिड़किए, तथा अपने पालनहार की अनुकंपा का वर्णन करते रहिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज रविवार है, मेहर की 24, रबीउल अव्वल की 19 और अक्टूबर की 16 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे विश्व समाचार, उसके बाद अनमोल बातें और उसके बाद राजनीतिक चर्चा। उसके बाद हम पेश करेंगे कुरान ईश्वरीय चमत्कार और अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तेहरान का कहना है कि हिंसा और दंगों का समर्थन करना अमरीका की आदत बन गई है। जनरल बाकेरी ने कहा है कि अपनी सीमा पर 3,000 आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्क साहित्यकार का कहना है कि ये मोदी या ट्रंप तय नहीं करेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना है या नहीं। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला की धमकी के बाद हमें लेबनान के साथ गैस फील्ड पर समझौता करना पड़ा है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए बाइडेन प्रशासन की कड़ी निंदा की है। शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान में हिंसा और दंगों के समर्थन में बयान दिया था। इसी तरह का बयान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी दिया था। रविवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कानानी ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा, बाइडेन ईरान के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और ऐसा ही उन्होंने ईरान में हालिया घटनाक्रमों के बाद किया। कानानी का कहना था कि इस सच्चाई के मद्देनजर कि वे ना तो विश्वसनीय सलाहकार रखते हैं और ना ही अच्छी याददाश्त रखते हैं, इसलिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि ईरान इतना मजबूत और दृढ़ है कि वो उनके क्रूर प्रतिबंधों और बेकार की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। गौरतलब है कि शनिवार को ईरान के हालिया घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए बाइडेन ने कहा था, ईरान में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों के साहस से वे आश्चर्यचकित हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि तेहरान बाइडेन के बयान और वाशिंगटन के हस्तक्षेपपूर्ण रवैये पर आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि हस्तक्षेप, आक्रामकता और हत्या अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।
ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख ने कहा है कि देश की सीमा के पीछे हजारों आतंकवादियों को सहन नहीं किया जाएगा। جنرل محمد باقری نے ایران کی پشچم اتری سیما پر آتنکوادیوں کی اپستھتی کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ ان 3000 آتنکوادیوں کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پرکار کے تتووں سے مقابلہ کیا جائے گا۔ ایران کے سشستر بلوں کے پرمکھ کے انوسار ایران کی اسلامی کرانتی کی سفلتا کے آرمبک دنوں نے ان گٹوں نے امریکہ اور کرانتی کے انیہ شتروں کی سہایتا سے عراق کے اتری کھیتر میں ٹھکانے بنا رکھے ہیں، کنتو حالیہ کچھ ورشوں کے دوران امریکہ کے سمرتھن سے ان کے یہ اڈے ایران کی راشٹریہ سرکشا کے لیے چنوتی کے روپ میں پریورتت ہو چکے ہیں۔
بھارت میں مسلم چھاتراؤں کے اسکولوں میں حجاب پہننے پر چھڑی بحث کے سندرب میں ترکی کے مشہور اپنیاسکار اورہان پاموک نے کہا ہے کہ مہیلاؤں کو ہی یہ طے کرنے دیا جانا چاہیے کہ وہ حجاب پہنے گی یا نہیں۔ ایک انٹرویو میں ساہتیہ کے نوبل پرسکار سے سمانت پاموک نے بی جے پی سرکار دوارا اسکولوں اور کالجوں کی چھاتراؤں کو حجاب پہننے سے روکنے کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا، فرانس میں مسلم لڑکیوں کے لیے حجاب پر بین لگانا مانویہ گریما کے خلاف ہے۔ غورطلب ہے کہ ترکیے میں بھی راشپتی طیب اردوگان کے ستہ سنبھالنے سے پہلے تک حجاب پر بین تھا، لیکن اردوگان نے ستہ سنبھالنے کے بعد اس بین کو ہٹا دیا کیونکہ دیش کی ادھکانش جنتا مسلم ہے اور وہ اس معاملے میں آزادی چاہتی تھی۔ مہیلاؤں کے حجاب پہننے یا نہیں پہننے کے بارے میں انہوں نے کہا، یہ نہ ٹرمپ طے کریں گے، نہ ہی مودی اور نہ ہی اردوگان، مہیلائیں خود طے کریں گی۔ اس بارے میں میری استھتی بالکل ادھاروادی ہے۔
ویشوک بھوک سوچکانک میں بھارت کو 107 ستھان پر دکھایا گیا ہے۔ بھارتی سنچار مادھیموں کے انوسار گلوبل ہنگر انڈیکس کے انڈیکس میں بھارت میں بھوک کی استھتی کو بہت ہی گمبھیر بتایا گیا ہے۔ ویشوک بھوک سوچکانک کے انوسار وشو میں بھوک کی درشٹی سے بھارت 107 ستھان پر پہنچ گیا ہے۔ اس حساب سے اپنے پڑوسی دیشوں پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، میانمار کی تلنا میں بھارت کی استھتی خراب ہے۔ وشو میں بھوک کے معاملے میں جہاں پر بھارت 107 ستھان پر ہے، وہیں پاکستان 99 پر، سری لنکا 64 پر، بنگلہ دیش 84 پر، نیپال 81 اور میانمار 71 ستھان پر ہیں۔ حالانکہ کچھ دیشوں کی استھتی بھارت سے بھی خراب ہے، کنتو وکاس کے مارگ پر بڑھتے بھارت کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد کانگریس نیتا پی چدمبرم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہندوتو ہندی تھوپنا، کھما کیجیے گا، ہندی تھوپنا اور نفرت پھیلانا بھوک کی دوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چدمبرم نے ٹویٹ کیا کہ بھاجپا سرکار ان آنکڑوں کو خارج کر دے گی اور اسٹڈی کرنے والے سنگٹھن پر چھاپا مارے گی۔ اسی سندرب میں دلی کے اپ مکھیہ منتری منیش سسودیا نے کہا ہے کہ بھارت کو 5 ٹریلین والی ارتھ ویوستھا بنانے کے بارے میں بھارتیہ جنتا پارٹی بھاشن دیتی رہتی ہے، لیکن وشو کے 107 دیش دن میں 2 سمے کا بھوجن اپلبدھ کرانے میں ہم سے بہتر ہیں۔
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں ایک وگیاپن چھپا ہے جس پر بھارت میں مودی سمرتھک کافی ہنگامہ مچا رہے ہیں۔ 13 اکتوبر کو اخبار میں چھپے اس وگیاپن میں لکھا گیا ہے کہ ملیے ان ادھیکاریوں سے جنہوں نے بھارت کو نویش کے لیے ایک اسرکشت جگہ بنا دیا ہے۔ اخبار کے وگیاپن میں وت منتری نرملا سیتا رمن، سپریم کورٹ کے ججوں، پروتن ندیشالیہ اور انے ادھیکاریوں کو وانٹیڈ بتاتے ہوئے ان پر پرتیبندھ لگانے کی مانگ کی گئی ہے۔ وگیاپن کا شیرشک مودیز میگنسکی 11 ہے۔ امریکی سرکار کے 2016 کے گلوبل میگنسکی قانون کے تحت ان ودیشی سرکار کے ادھیکاریوں پر پرتیبندھ لگایا جاتا ہے جنہوں نے مانوادھیکاروں کا الگھن کیا ہے۔ وگیاپن میں 11 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، جس کے بعد لکھا ہے، مودی سرکار کے ان ادھیکاریوں نے راجنیتک اور ویاپارک پرتیدندیوں سے حساب چکتا کرنے کے لیے راجیہ کی سنستھاؤں کو ہتھیار کے روپ میں استعمال کر کے قانون کا شاسن ختم کر دیا ہے، بھارت کو نویشکوں کے لیے اسرکشت بنا دیا ہے۔
राहुल गांधी ने कर्नाटक की सरकार को असुनिश्चित जनजाति विरोधी बताया है। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के बारे में कहा है कि यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार भी कहा जाता है। कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक में भाजपा नित सरकार SC और ST विरोधी है। उन्होंने कहा कि इन उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ अत्याचार में 50% की वृद्धि हुई है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्रेन की एक बोगी में अभ्यर्थियों से खचाखच भरे डिब्बे की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरे खाने को मजबूर हैं।
इसराइल के गृह मंत्री एलिज शाकेत का कहना है कि हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला की धमकियों के कारण ज़ायोनी शासन और लेबनान के बीच समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। एक इसराइली टीवी चैनल से बात करते हुए ज़ायोनी मंत्री ने कहा कि हिजबुल्ला के महासचिव की धमकी ने ज़ायोनी शासन को लेबनान के साथ समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए मजबूर कर दिया। हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्ला ने कहा था कि अगर लेबनान के अधिकारियों की अनदेखी की गई और लेबनान समुद्री सीमाओं के सीमांकन में अपने अधिकारों तक नहीं पहुंच पाया तो भूमध्य सागर में कैरिश गैस फील्ड को उड़ा दिया जाएगा। इससे पहले लेबनान के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के नेता जिब्रान बासिल ने कहा था कि हिजबुल्ला के महासचिव ने गैस और ऑयल फील्ड से गैस या तेल नहीं निकालने की अपनी चेतावनी से अपनी शक्ति को साबित कर दिया है। बासिल का कहना था कि हमने काना फील्ड को प्राप्त कर लिया है जबकि ये फील्ड पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में स्थित नहीं है।
पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान पर पाकिस्तान से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बाइडेन के बयान को आश्चर्यचकित करने वाला बताया। बेलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु क्षमता पर पाकिस्तान कभी भी सौदेबाजी नहीं करेगा।
रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी करके बताया गया है कि इस देश के एक ट्रेनिंग सेंटर पर किए गए हमले में 11 लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार इस देश के दक्षिणी क्षेत्र के बेलगोरेद इलाके में ये घटना घटी जो यूक्रेन की सीमा से लगता है। बताया जा रहा है कि सैन्य ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण हासिल कर रहे दो सैन्य प्रशिक्षकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें 11 लोग मारे गए। बाद में जवाबी कार्रवाई में दोनों आक्रमणकारी मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। ये हमला शनिवार को किया गया। रूस के ट्रेनिंग सेंटर पर यह हमला ऐसी स्थिति में हुआ है कि जब इस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपने एक भाषण के दौरान यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा था कि पश्चिमी देश रूस को कमजोर करके उसे तोड़ना चाहते हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं।
आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में महिला पर जुल्म क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद मेहदी का सलाम, स्वीकार कीजिए। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उस्मान सैयद अली खामनाई का मानना है कि पश्चिमी समाज में ये बात बुरी तरह से फैल चुकी है कि महिला से लाभ उठाने वाली चीज के रूप में प्रयोग किया जाए और ये महिला पर बहुत बड़ा जुल्म है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा अपमान और महिलाओं के बारे में सबसे बड़ा अधिकारों का हनन यही है। सामाजिक वातावरण में एक ऐसी संस्कृति अस्तित्व में आती है जो महिला को एक फायदा उठाने वाली चीज के तौर पर पेश करती है, जो महिला को एक लाभदायक वस्तु के रूप में लाभ उठाने को पेश करती है। खेद की बात यह है कि ये मुद्दा आज पश्चिमी संस्कृति में बुरी तरह फैल चुका है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उस्मान सैयद अली खामनाई का ख्याल है कि दूसरे लोग भी इसका अनुसरण करने लगे, दूसरे लोग इसी रास्ते पर चलने लगे, दूसरे लोग इसी रास्ते पर निकल पड़े, उनको इसे दुनिया में फैलाने की कोशिश की। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उस्मान सैयद अली खामनाई कहते हैं कि अगर किसी ने इसके खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हंगामा मचा देते हैं। मान लीजिए कि अगर एक समाज में सार्वजनिक स्थल पर महिला के मेकअप में या बन ठन जाने के मामले की निंदा की गई है, इस मामले पर तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि अगर आप इस नजरिए के खिलाफ हैं, यानी एक समाज में महिलाओं की नग्नता को पेश किया जाए, तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हंगामा नहीं होता है, लेकिन जब महिला के हिजाब का मामला आता है, उसके मेकअप न करने और उसके बन ठन के न रहने का मामला समाज में पेश किया जाता है तो दुनिया पर वर्चस्व जमाए प्रचारिक तंत्र खूब हंगामा मचाते हैं। ये इस बात का चिन्ह है कि एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक नीति और एक रणनीति पाई जाती है जिसे पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है और इसका आधार यह है कि एक स्थान और ये जगह एक गलत और अपमानजनक चीज को महिला के लिए साबित करें और खेद की बात यह है कि उन्होंने इसको साबित भी कर दिया है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उस्मान सैयद अली खामनाई कहते हैं कि आप लोगों के लिए देखते हैं कि पश्चिम में धीरे धीरे और खुलकर हिजाब का विरोध किया जाता है। इस विरोध के लिए जिस बात को आधार बनाया जाता है ये है कि वो कहते हैं कि हिजाब एक धार्मिक कार्य है और हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में, जो एक धर्म विरोधी समाज है, धार्मिक प्रतीकों को पेश किया जाए। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये झूठ है, ये धर्म और अधर्म का मामला नहीं है। ये बहस इस बात की है कि पश्चिम की बुनियादी रणनीतिक नीति महिलाओं की प्रसूति और अवेश्यावृत्ति पर आधारित है, जबकि हिजाब इसका विरोध करता है। यहाँ तक कि अगर हिजाब धार्मिक और ईमानी उद्देश्यों के लिए न भी हो तब भी उसका विरोध करते हैं। मूल समस्या यही है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम, स्वीकार कीजिए। اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کرنے والے ریزسٹنس فرنٹ کے علماء کی بیٹھک دکشنی لبنان کے سیدہ شہر میں ہوئی، جس کا وشے فلسطین کا سمرتھن اور اسرائیل سے رشتے بحال کرنے کی عرب سرکاروں کی نیتیوں کی آلوچنا کرنا تھا۔
نحن نفخر بهذا الانتماء لخط المقاومة۔
کوریا پرائدیپ میں بڑھتے تناؤ کے دشت گت اتر کوریا نے کہا ہے کہ اکساوے والی کاروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اتری کوریا کے سینے پروکتا نے کہا ہے کہ اکساوے والی کاروائی کو اتری کوریا کے کڑے جواب کا سامنا ہوگا۔
اتری کوریا کی سینا کے پروکتا نے شنیوار کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ
ماننیے شیعہ نیتا اور نیشنل کانفرنس کے کیندری نیتا آقا سید روح اللہ نے کہا ہے کہ نئی دلی نے جموں کشمیر کو بندھک بنا رکھا ہے۔ انہوں نے سری نگر میں کہا کہ جموں کشمیر کو اب وشیش راجیہ کا درجہ واپس کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دلی نے جموں کشمیر کے سمبندھ میں جو بھی نرنے لیے میں ان کا ورودھ کرتا ہوں۔ اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کرنے والے ریزسٹنس فرنٹ کے علماء کی بیٹھک دکشنی لبنان کے سیدہ شہر میں ہوئی، جس کا وشے فلسطین کا سمرتھن اور اسرائیل سے رشتے بحال کرنے کی عرب سرکاروں کی نیتیوں کی آلوچنا کرنا تھا۔ ساتھی احمد عباس۔
اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کرنے والے ریزسٹنس فرنٹ کے علماء کی بیٹھک دکشن لبنان کے سیدہ شہر میں ہوئی، جس کا وشے فلسطین کا سمرتھن اور اسرائیل سے رشتے بحال کرنے کی عرب سرکاروں کی نیتیوں کی آلوچنا کرنا تھا۔ اس بیٹھک میں علماء نے بھاگ لیا۔
نحن نفخر بهذا الانتماء لخط المقاومه۔
لبنان کے ورشٹھ سنی دھرم گرو نے کہا کہ ریزسٹنس فرنٹ کا حصہ ہونے پر ہمیں گرو ہے، اسی راستے پر ایکتا کے ساتھ چل کر ہم فلسطین کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ جو مسلم سرکاریں غداری کر رہی ہیں ان کا فلسطینی جنتا کے بیچ کوئی استھان نہیں ہے۔
امام خمینی رحمہ اللہ۔
ایک فلسطینی سنی دھرم گرو نے امام خمینی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی نے ہمیشہ فلسطین کی آزادی کی بات کی اور شیعہ سنی ایکتا کے لیے کام کیا۔ آیت اللہ خامنے بھی اس وشے پر ہمیشہ زور دیتے ہیں، ان کے سجھاؤ ہمارے لیے اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں دیپک کا کام کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری شیخ نعیم قاسم نے اس بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جگت کے سب سے پرمکھ مدے یعنی فلسطین اور اسلامی ریزسٹنس کو کیندر میں رکھ کر مسلمان ایک جٹ ہو سکتے ہیں اور اپنے مدوں کو حل کر سکتے ہیں۔
ضد العدو الاسرائیلی۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو کیول ریزسٹنس سے ہرایا جا سکتا ہے، وہ بات چیت سویکار کرنے والا شاسن نہیں ہے۔ شکروار کو اپنی تقریر میں امام خامنے نے کہا کہ اسرائیل سے رشتے استھاپت کرنے والے دراصل اسلامی جگت سے غداری کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ دو مہینے بعد لبنان کی راجدھانی بیروت میں اسلامی ریزسٹنس فرنٹ کے علماء کی ایک اور بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ بیٹھک میں شامل علماء نے کہا کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اور اسرائیل سے رشتے قائم کرنے کی کچھ سرکاروں کی کوششوں پر انکش لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی جگت اور مسلم سمودائے پوری دنیا میں آگے آئے۔ سیدا سے آئی آر آئی بی کے لیے حسن عظیم زادے کی رپورٹ۔
کوریا پرائدیپ میں بڑھتے تناؤ کے دشتگت اتر کوریا نے کہا ہے کہ اکساوے والی کاروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اتری کوریا کے سینے پروکتا نے کہا ہے کہ اکساوے والی کاروائی کو اتری کوریا کے کڑے جواب کا سامنا ہوگا۔ پوری جانکاری کے ساتھ ایک سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی قائم رضوی۔
کوریا پرائدیپ میں بڑھتے تناؤ کے بیچ اتری کوریا نے کہا ہے کہ اکساوے والی کاروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اتری کوریا کی سینا کے پروکتا نے شنیوار کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیتر میں امریکہ اور اس کے گھٹکوں کی کسی بھی پرکار کی اکساوے والی کاروائی کو اتری کوریا کے منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ امریکہ اور اس کے گھٹک اتری کوریا کے سینیہ کارکرم کو خطرناک بتاتے رہے ہیں۔ किंतु वास्तविकता यह है कि पूर्वी एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करते हुए अमेरिका दक्षिणी कोरिया और जापान को उत्तरी कोरिया के विरुद्ध हमले के लिए उकसा रहा है, जबकि दूसरी ओर चीन उत्तरी कोरिया को हथियारों की प्रतिस्पर्धा में आगे लाना चाहता है। इसी के साथ क्षेत्र में जापान के युद्धक विमानों की उड़ानों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन सब बातों को देखते हुए उत्तरी कोरिया अपनी सीमा पर हवाई उड़ान के लिए बाध्य है। ये सारी बातें उत्तरी कोरिया के विरुद्ध क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को दर्शाती हैं। उत्तरी कोरिया ने बचाव के लिए अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को अधिक मजबूत बनाने का काम तेज कर दिया है। इससे पता चलता है कि कोरिया प्रायद्वीप में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति को उत्तरी कोरिया बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। इस काम को वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है। कोरिया प्रायद्वीप के तनावपूर्ण हालिया वातावरण के दृष्टिगत जापान द्वारा डराने वाला वातावरण पैदा किया जा रहा है, जिसको उत्तरी कोरिया स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि जापान का कहना है कि वो उत्तरी कोरिया के सैन्य कार्यक्रम से भयभीत है, किंतु उसने भी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के मार्ग में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। अधिकांश जापानी भी यही चाहते हैं कि क्षेत्र को हर प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखा जाए। यहाँ पर इस बिंदु की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर कोरिया प्रायद्वीप में किसी भी प्रकार की अशांति पैदा होती है तो उसका नुकसान जापान और दक्षिणी कोरिया को निश्चित रूप से होगा। कोरिया प्रायद्वीप के संकट का हल करने के उद्देश्य से की जाने वाली 6-पक्षीय वार्ता को अमेरिका द्वारा विफल बनाना ये दर्शाता है कि वाशिंगटन को कोरिया प्रायद्वीप के संकट को समाप्त करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो तो उत्तरी कोरिया का भय दिखाकर पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है। इस प्रकार से पूर्वी एशिया में अमरीका की सैन्य पकड़ मजबूत हो जाएगी। जैसा कि सबको पता है कि जापान और दक्षिणी कोरिया का व्यापार अधिकतर निर्यात पर आधारित है, ऐसे में उनको क्षेत्र में शांति की अधिक आवश्यकता है। अगर क्षेत्र में अशांति होगी तो इससे उनका निर्यात प्रभावित होगा, जो इन देशों की अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक सिद्ध होगा। ऐसे में अगर किसी को भी लाभ होगा तो वो होगा अमरीका और पश्चिम की हथियार बेचने वाली कंपनियों को, जैसा कि यूक्रेन में देखा जा रहा है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
माननीय शिया नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के केंद्रीय नेता आका सैयद रूहुल्ला ने कहा है कि नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर को बंधक बना रखा है। उन्होंने श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर को अब विशेष राज्य का दर्जा वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के संबंध में जो भी निर्णय लिए, मैं उनका विरोध करता हूँ। पूरी जानकारी के साथ श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
माननीय शिया नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के केंद्रीय नेता आगा सईद रूहुल्ला ने नई दिल्ली पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को यरगमाल बना के रखा है। श्रीनगर में अपने एक वीडियो वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है और अब ऐसा दिख रहा है कि तमाम राजनीतिक दलों ने ये मुतालबा ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इवन अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट भी नहीं है और इसे एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में यहाँ पर राजनीतिक सक्रिया बहाल करना मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने कश्मीर के हवाले से जो भी निर्णय लिए, मैं उनका विरोध करता हूं और जब तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस नहीं दिया जाता, मैं अपना राजनीतिक अभियान जारी रखूंगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
The concern for the people of Jammu and Kashmir should have been the return of 370. I see and I notice and one can feel that the people in general and the political parties have almost given up on that. So the other issues, which are otherwise also now, it's not a state given. So there are not many issues that political parties can technically now talk about. So it would be a glorified municipality. So the issues that I think should be there and would be there should be about drains, basic facilities, for example, drains, roads, electricity.
इस बीच दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में एक पंडित के हत्या के बाद एक बार फिर सुरक्षा बलों ने क्रैकडाउन आरंभ कर रखा है जो कई क्षेत्रों में जारी है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करके उसे सजा देना चाहते हैं जो भी इस घटना में आरोपी हैं। स्थानीय पंडितों ने इस हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि पंडित बिरादरी यहाँ पर सुरक्षित है, परंतु आए दिवस हमारे लोग मारे जाते हैं लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने नई दिल्ली पर आरोप लगाया कि वो राजनीति के खातिर पंडितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मेनस्ट्रीम दलों के गठबंधन पीएजीडी ने यानी गुपकार एलायंस ने नई दिल्ली से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से पहले यहाँ राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है हम ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग काफी गम गुस्से में हैं, परंतु कॉस्मेटिक अमन दिखाया जा रहा है जो देर पा साबित नहीं होगा। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
तो श्रोताओ, सिप्ते मोहम्मद हसन की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम कुरान ईश्वर चमत्कार।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह अंबिया की 21वीं और 22वीं आयतों की तिलावत सुने।
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون।
या अनेक ईश्वरवादियों ने धरती से कुछ पूज्य बना लिए हैं जो उन्हें जीवित करते हैं। यदि आकाशों और धरती में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे पूज्य भी होते तो निश्चित रूप से इन दोनों की व्यवस्था बिगड़ जाती। तो पवित्र है अर्श का पालनहार अल्लाह उन बातों से जो ये बयान करते हैं।
पिछली आयतों में बताया गया कि संसार की सृष्टि एक निर्धारित लक्ष्य व कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है और न तो ये संयोग का परिणाम है और न ही लक्ष्यहीन है। ये आयतें सृष्टि की व्यवस्था की एकजुटता पर बल देते हुए कि जो पालनहार के अनन्य होने का एक प्रमाण है कहती हैं कि जब अनेकेश्वरवादी ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर वे पत्थर और लकड़ी की बनी मूर्तियों के सामने क्यों झुकते हैं और धरती के इन तथा कथित पूज्यों की क्यों उपासना करते हैं? क्या उनके पास भी अनन्य ईश्वर की भांति सृष्टि की रचना करने की शक्ति है?
आगे चलकर आयतें कहती हैं कि यदि ईश्वर को छोड़कर भी कुछ अन्य पूज्य होते तो सृष्टि की व्यवस्था भंग हो जाती और इतनी विशाल सृष्टि में जो आश्चर्यजनक समन्वय दिखाई पड़ता है उसका कहीं अस्तित्व न होता। इसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि दो लोग चाहे उनमें जितना समन्वय और जितनी समरसता हो, दो लोग ही होते हैं और उनमें विभिन्न अंतर पाए जाते हैं, और यदि ये मान लिया जाए कि उनकी सभी बातें एक समान हो तो फिर वे दो नहीं बल्कि एक होंगे।
ये आयतें इसी प्रकार उन लोगों के उत्तर में जो हर वस्तु और हर बात के लिए पालनहार और युक्तिकर्ता के अस्तित्व की बात करते हैं, कहती हैं कि अनन्य ईश्वर ही अर्श अर्थात संपूर्ण सृष्टि का पालनहार है और सृष्टि के संचालन में किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं है।
इन आयतों से हमने सीखा कि सृष्टि के संचालन में समन्वय व एकजुटता रचयिता व पालनहार के एक एवं अनन्य होने का प्रमाण है।
यदि सृष्टि में एक से अधिक इरादे का शासन होता तो उनमें से प्रत्येक का कुछ आदेश होता जो दूसरे के आदेश से टकराता और इस प्रकार पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती।
يا مليك القلب يا ابن المصطفى رفرف القلب إليك وهوى رفرف القلب إليك وهوى يا مليك القلب يا ابن المصطفى رفرف القلب إليك وهوى رفرف القلب إليك وهوى
آئیے اب سورة انبیاء کی 23 آیت کی تلاوت سنیں۔
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
جو کچھ ایشور کرتا ہے اس سے اس کی کوئی پوچھ نہیں ہو سکتی کنتو ان سے ان کے کاریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
پچھلی آیتوں میں ایشور کے اننیہ ہونے کو صدق کرنے کے پشچات قرآن مجید اس آیت میں کہتا ہے کہ اس نے سرشتی کی اس پرکار رچنا کی ہے اور تتو درشتا کے آدھار پر اسے اتنا سویوستھت بنایا ہے کہ اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی سندیہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس کے کارے پر نہ تو آپتی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے پرشن کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ کدابھی اس پرکار نہیں ہیں اور ان کے کاریوں میں اتیادھک تروٹی ہوتی ہے جس کے بارے میں ان سے پرشن کیا جا سکتا ہے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ ایشور کے کارے گیان و تتو درشتا کے آدھار پر ہوتے ہیں تتھا ان میں کسی بھی پرکار کی تروٹی یا کمی نہیں ہوتی، اتہ ان کے بارے میں کسی بھی پرکار کا پرشن نہیں کیا جا سکتا۔
منوشیہ اپنے کرموں کے پرتی اتر دائی ہے اور اسے پرلے کے دن ان کا اتر دینا ہوگا۔
آئیے اب سورہ انبیاء کی 24 آیت کی تلاوت سنیں۔
أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔
یا انیکیشور وادیوں نے اننیہ ایشور کو چھوڑ کر دوسرے پوجے بنا لیے ہیں، ہے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یدی ایسا ہے تو اپنے ترک لے آؤ، یہ میری اور ان کی بات ہے جو میرے ساتھ ہیں اور جو پیغمبر مجھ سے پہلے تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا، کنتو بات یہ ہے کہ ان میں سے ادھک تر ترک کو سویکار نہیں کرتے ہیں، اتہ ستیہ کو جانتے بھی نہیں ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔
ایشور کے ایک و اننیہ ہونے کے پرمان و ترک پرستت کرنے کے بعد یہ آیت کہتی ہے کہ ہم نے اپنے ترک پرستت کر دیے ہیں اور یدی تم انیک ایشور وادیوں کے پاس بھی کوئی ترک یا پرمان ہو تو اسے پرستت کرو۔ اسپشٹ ہے کہ ان کے پاس اپنے انیکیشورواد کے سمبندھ میں کوئی ترک سنگت پرمان نہیں ہے اور یدی وے اپنے پوروجوں کا اندھا انوسرن کرنے کے استھان پر وچار و چنتن منن کرتے تو ستیہ کو پہچان لیتے اور اس پرکار پتھ بھرشٹتا و اندھ وشواسوں میں گرست نہ ہوتے۔
آگے چل کر آیت کہتی ہے کہ ایکیشورواد پر آستھا کیول مسلمانوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کے سبھی دھرموں و پیغمبروں کی بھی یہی آستھا رہی ہے اور انہوں نے بھی انیکیشور وادیوں سے इसी प्रकार की बातें कही हैं और उनसे अनेकेश्वरवाद के प्रमाण व तर्क की मांग की है।
ईसाई से हमने सीखा कि अनेकेश्वरवादियों और काफिरों के साथ पैगंबरों का व्यवहार तर्क संगत रहा है और वे उनसे तर्क व प्रमाण प्रस्तुत करने को कहते थे।
एकेश्वरवाद को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क व प्रमाण है, किन्तु अनेकेश्वरवाद का कोई भी तर्क संगत एवं बौद्धिक सहारा नहीं है।
किसी भी बात का सत्य या असत्य होना बहुमत या अल्पमत के अनुसार नहीं बल्कि बुद्धि व तर्क के अधीन होता है। अनेक बार ऐसा होता है कि सच बोलने वाले अल्पमत में होते हैं जबकि बहुमत का मार्ग गलत होता है।
یہ پرسنل آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں اور اب پرسوت ہے اگلا کاریکرم آج کل۔
آج کل दोस्तों, ईरान के हालिया घटनाक्रमों और इस्लामी क्रांति की सफलता तथा उसकी हिफाजत में ईरानी युवाओं की भूमिका के बारे में एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित है कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के दुश्मनों ने देश में घटने वाली हालिया घटनाओं का राजनीतिक दुरुपयोग करते हुए जल्दबाजी में इसकी समीक्षा की। हम अगले कुछ कार्यक्रमों में इन घटनाक्रमों की समीक्षा करेंगे। पहले कार्यक्रम में इस्लामी क्रांति की सफलता और उसकी हिफाजत में ईरानी युवाओं की भूमिका का उल्लेख करेंगे और इस बात का जायजा लेंगे कि इस्लामी गणतंत्र के दुश्मनों ने मनोवैज्ञानिक और मीडिया युद्ध छेड़कर इन घटनाक्रमों को किस तरह से अपने हितों के मुताबिक रुख देने की कोशिश की है। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान में जो घटनाएं घटी हैं उनका अमेरिका और उससे कुछ सहयोगी देशों ने राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया। हमेशा की तरह इस्लामी गणतंत्र के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दुश्मन जल्दबाजी में अनुमान लगाने लगे और कुछ कमियों से नाराज युवाओं को उकसाकर अशांति जारी रखने का प्रयास करने लगे। ईरान की इस्लामी क्रांति के दुश्मन इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद पिछले चार दशकों से इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए हर उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय और क्षेत्रीय सहयोगी इस्लामी गणतंत्र से गहरी दुश्मनी रखते हैं। इस्लामी व्यवस्था का पतन अमेरिका की मुख्य विदेश नीति रही है। हालांकि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने पिछले 40 से अधिक वर्षों के दौरान सभी संकटों, अशांतियों और आतंकी घटनाओं का सामना किया। इन समस्त घटनाओं में अमरीका, ज़ायोनी शासन और कुछ यूरोपीय देशों का हाथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दोस्तों, पश्चिमी देश जब ये समझ गए कि आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार बनाकर सैन्य हमला करके और उच्च अधिकारियों समेत 17,000 लोगों का जनसंहार करने के बाद भी इस्लामी गणतंत्र ईरान को उखाड़ फेंकने में वे जब सफल नहीं हो सके तो उन्होंने ईरान के भीतर संकट उत्पन्न करने के लिए मीडिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया। हालिया घटनाओं में भी पिछले समस्त घटनाक्रमों की तरह अमेरिका और उसके सहयोगियों की भूमिका को देखा जा सकता है। हालांकि सभी देशों में सरकारों की नीतियों और कार्यों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध होता रहता है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां अमेरिका और यूरोपीय देश हस्तक्षेप करते होंगे और अशांति को जारी रखने के लिए मीडिया युद्ध द्वारा अफवाहों का बाजार गर्म रखते हों। लेकिन ईरान में होने वाला विरोध दुनिया भर में मीडिया की हेडलाइंस बन जाता है, जबकि ठीक उसी समय अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों का दर्दनाक नरसंहार किया जाता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया इसकी खबर भी नहीं छपने देता। इस संदर्भ में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने अपने हालिया भाषण में ये कहा है कि दुनिया में कई जगह उपद्रव होता है। आप देखिए, यूरोप में, फ्रांस में कुछ समय के अंतराल से पेरिस की सड़कों पर बड़े पैमाने पर उपद्रव होता है। मैं ये पूछता हूँ कि क्या कभी अमरीकी राष्ट्रपति और अमरीकी सांसदों ने उपद्रवियों का समर्थन किया? क्या कभी उन्होंने संदेश भेजा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्या कभी अमरीकी पूंजीवादी और अमरीकी सरकार के संचार माध्यमों ने, उनके एजेंटों ने, जैसे कि दुर्भाग्यवश सऊदी अरब जैसे कुछ क्षेत्रीय देशों ने आगे बढ़कर उपद्रवियों का समर्थन किया? क्या कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं। उन्होंने ये घोषणा की कि हम उपद्रवियों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाएंगे ताकि वे आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकें और अपना काम जारी रख सकें। क्या कहीं भी दुनिया में या किसी भी देश में ऐसा हुआ है? लेकिन यह ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार ऐसा हुआ है। इस्लामी क्रांति के दुश्मन ईरान की युवा और ऊर्जावान पीढ़ी पर सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। किसी भी समाज में युवा अपनी क्षमता, ऊर्जा और प्रतिभा के कारण समाज के भविष्य में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम होता है और किसी भी समाज में युवाओं को समाज की मुख्य पूंजी समझा जाता है, जिससे उस समाज की प्रगति के लिए आधार प्राप्त हो सकता है। साइंस, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला और स्पोर्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उस समाज की प्रगति और विकास का आधार युवा पीढ़ी होती है। ईरान में भी युवा पीढ़ी ने देश की प्रगति और विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। हमने क्रांति की सफलता और इस्लामी व्यवस्था की स्थापना तक और उसके बाद के विभिन्न चरणों में युवाओं की प्रतिभाशाली उपस्थिति देखी है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहि सलाम के व्यावहारिक जीवन से पता चलता है कि उन्होंने हमेशा ही युवाओं पर प्रभावशाली, गतिशील और उभरती पीढ़ी के रूप में ध्यान दिया है और इस पर बल दिया है कि युवाओं को कभी भी नज़रअंदाज न किया जाए, क्योंकि किसी भी वर्ग और समूह से अधिक इस्लाम ने युवाओं को न्याय के लिए संबोधित किया है। युवाओं की मदद से ही इतिहास में धर्म और समाज एक अटूट बंधन में बंधे और ईरानी राष्ट्र के भाग्य को प्रभावित किया। इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने इस आध्यात्मिक पूंजी के महत्व को समझा। उन्होंने इसका इस्तेमाल इस्लाम की सेवा के लिए और शाही शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किया। उन्होंने आत्मा और विचार की उन्नति और विकास के लिए हर अवसर का उपयोग किया। इस्लामी क्रांति के सूत्रधार और संस्थापक ने 1963 में इस्लामी आंदोलन की शुरुआत में ही ये घोषणा कर दी थी कि ईश्वर की शक्ति और युवाओं पर भरोसा करके वे ईश्वरीय धर्म के दुश्मनों का सामना करेंगे। स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने इस्लामी क्रांति के आंदोलन के दौरान और उसकी सफलता के बाद थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के दौरान स्वयंसेवी युवाओं के समर्थन से स्वतंत्र और शक्तिशाली ईरानी झंडा फहराया। इस्लामी क्रांति के नेता का ये मानना है कि ईरानी युवा सम्मान चाहते हैं। इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता और आज़ादी का नारा दिया है। ईरानी जनता, विशेष रूप से युवाओं ने इस्लामी गणतंत्र के उत्थान में इन प्रमुख नारों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने इसके लिए किसी भी व्यक्ति या शक्ति से समझौता नहीं किया। इमाम खुमैनी के स्थान पर कहते हैं, आप युवाओं के महान प्रयासों के कारण ही हमने सफलता अर्जित की है। ईरान से भ्रष्टाचार की जड़ को कुछ हद तक हमने उखाड़ फेंका। ये युवा ही थे जिन्होंने आत्म बलिदान के जरिए इस्लाम को साम्राज्यवादी शक्तियों और दुश्मनों से सुरक्षित रखा। आप जवान लोग ही हैं जो शब्दों और शक्ति की एकता के साथ इन विश्वासघाती लोगों के हाथों से इस्लाम को बचाएंगे। 8 वर्षीय युद्ध में व्यावहारिक युद्ध से प्रतिरोध की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर ही रही। वे युवा जो अपनी उम्र के 20वें या 30वें साल में थे, उन्होंने 8 वर्षीय युद्ध के दौरान ऐसे महाकाव्यों की रचना की जिसकी मिसाल उतार चढ़ाव भरे ईरान के इतिहास में कम ही मिलती है। दोस्तों, थोपे गए युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान के युवाओं ने उसी साहस और निस्वार्थ भावना के साथ आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में देश के विकास की दिशा में महान कदम उठाए। युवाओं ने अपने ज्ञान और प्रतिभा के साथ शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा के ईंधन उत्पादन चक्र का ज्ञान हासिल किया। इसलिए ज़ायोनी शासन और अमेरिका ने शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक के विकास को रोकने के लिए ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामेनेई का ये मानना है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के विकास के मार्ग में बाधा डालने के लिए देश में संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। इस संदर्भ में उनका कहना था कि मैंने जो महसूस किया वो ये है कि वे देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में ईरान प्रगति कर रहा है और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे इसे महसूस कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं। वे ये देख रहे हैं कि कुछ पुरानी गांठें खुल रही हैं, हालांकि देश में बहुत सी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए वर्षों पहले से काम किया जा रहा है और इन समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। विदेशी सरकारें ईरान को प्रगति करते हुए देख रही हैं। उन्हें पता है कि ईरान बहुत तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। ये एक सच्चाई है, वे नहीं चाहते हैं कि ईरान प्रगति करे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।